તારીખ 8/5/1995 પૂજ્ય બેનશ્રીના વચનામૃત બોલ નંબર 2 અને 21 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 346.
બેન શ્રી કે વચનામૃત દો નંબર કા વચનામૃત હૈ પ્રારંભ મેં અંતર કી ગહેરાઈ સે અપના હિત સાધને કો જો આત્મા જાગૃત હુઆ ઓર જિસે આત્મા કે સચ્ચે લગન લગી उसके आत्मलगन ही उसे मार्ग कर देगी. अंतर की गहराई से ये शर्त है, ऊपर ऊपर से नहीं. एक इसलिए कहना आवश्यक हुआ है कि बहुभाग मुमुक्षु ऊपर ऊपर से चलते हैं कि चलो हम भी गुरुदेव के अनुयायी हैं और हमारी गिनती इस समाज में है, थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं, हो गया. उनको तो मार्ग मिलने वाला नहीं है, उसका आत्महित नहीं होता. इसलिए ऐसा कहा कि अपना हित साधने में अंतर की गहराई से जो आत्मा जागृत हुआ, जो जीव की ऐसी जागृति आई कि इस अनंत काल में दुर्लभ ऐसा मनुष्य भव मिला है, तो मुझे मेरा आत्मकल्याण किसी भी कीमत पे कर लेना है. कल जो उपाध्याय में आया था रात को कि मुमुक्षु को कितनी दृढ़ता होती है, आत्महित के विषय में कितनी दृढ़ता होती है कि जगत की कोई भी अनुकूलता और प्रतिकूलता को वो गिनेगा नहीं. यानी अनुकूलता में रुकेगा न प्रतिकूलता में रुकेगा. इतना जोर से जो आगे बढ़ना चाहता है तो उसको अंतर की गहराई से वो भाव उठा है. वहां कृपालु देव के वचनामृत था, यही अभिप्राय से यहां बहनश्री के वचनामृत है. किसी के नाम लेकर इनके वचनामृत को पढ़ो, अनंत ज्ञानियों का एक ही अभिप्राय होता है. सभी ज्ञानी एक ज्ञानी कहते हैं, वो सब ज्ञानी कहते हैं. ऐसा नहीं है कि एक ज्ञानी जो कहते हैं दूसरा ज्ञानी इससे कोई दूसरी बात विरुद्ध करते हो, ऐसा कभी होता नहीं है. अंतर की गहराई से अपना हित साधने को जो आत्मा जागृत हुआ और जिसे आत्मा की सच्ची लगन लगी, आत्म प्राप्ति की सच्ची लगन लगी, लगन लगी नहीं, सच्ची लगन लगी. वो कैसी होती है कि कोई छुड़ाना चाहे तो भी छूटे नहीं. ऐसा हो सकता है कि जिसको लगने लगे आत्म प्राप्ति की और इसको इसका विरोध करने वाला भी प्रतिकूल संयोग भी, दुर्निमित जिसको कहते हैं, दुष्ट निमित्त को दुर्निमित्त को वो भी उत्पन्न हो जाए. जैसे कि परिवार में संप्रदाय का धर्म होता है, और गुरुदेव के संपर्क में आने से संप्रदाय के धर्म को छोड़ करके इसका अनुसरण, इस तत्वज्ञान का और गुरुदेव का कहा हुआ मार्ग का कोई अनुसरण करने लगता है तो घर में विरोध भी हो सकता है। कभी हमारे यहाँ तो ऐसा केस भी बना है कि घर में एक ही व्यक्ति ऐसे हो और वो भी स्त्री पर्याय में हो और पुरुष लोग घर के विरुद्ध हो, पति विरोध में हो, दूसरे भी मुरब्बी लोग, वडील वर्ग है वो विरोध में हो, तो जिसको लगन लगी है वो लगन इसकी इस कारण से छूट जाए ऐसा कभी बनता नहीं है। विरोध करने वाले विरोध तो करेंगे क्योंकि उनकी समझ ऐसी है कि वो ठीक नहीं कर रहे हैं, अपना अकुल धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए, धर्म की फेरबदली करना बड़ा पाप है ऐसा लोग मानते हैं। ये फेरबदली नहीं है, सच्चा धर्म की परीक्षा करके अनुसरण करना ये हर आत्मा का हर जीव का फर्ज है, ये धर्म है। तो उसका विरोध करने से या विरोध होने से लगनी मिटेगी तो नहीं, छूटेगी तो नहीं, किंतु और तीव्र हो जाएगी। ये सच्ची लगन का स्वरूप है। विरोध होने से क्या होगा, और तीव्रता आ जाएगी इसमें, और ऐसा होता है, बहुत कैसे से बने हैं और दृढ़ता में वो आ जाते हैं। ये सच्ची लगन है। हाँ, जागृति और लगन में कोऑर्डिनेशन क्या है, प्रश्न वो है कि जागृति ऐसी होती है कि मेरे मुझे आत्महित कर लेना है, मेरा अहित हो ऐसा मुझे कुछ नहीं करना है, तो अपने चलते हुए परिणाम पर वो जागृति चालू हो जाती है, क्योंकि नुकसान होता है वर्तमान परिणमन में, भूत भविष्य में नुकसान नहीं होने का सवाल है, वर्तमान में ही नुकसान होता है, तो वहाँ जागृति आती है। और वो किस कारण से आती है कि आत्महित की लगन के कारण से आती है। तो एक दूसरे में कार्य कारण संबंध होता है, इस प्रकार का कोऑर्डिनेशन उसमें होता है। जागृति
पहले जागृति होती है या लगनी पहले होती है?
ऐसे तो लगनी पहले होती है और जागृति आ जाती है, लगन लगती है तो जागृति आ जाती है, लगनी के कारण जागृति आ जाती है। और लगनी के कारण ऐसा कहेंगे यहाँ तो कि आत्मा की उसकी आत्मलगनी उसे मार्ग कर देगी, जागृति ला देगी, अपने प्रयोजन की दृष्टि को तीक्ष्ण और सूक्ष्म कर देगी, उदासीनता ला देगी, जिज्ञासा आत्मस्वरूप कैसा है इसकी सच्ची जिज्ञासा उत्पन्न कर देगी, अनेक प्रकार के मुमुक्षु की भूमिका के आनुषंगिक परिणाम होते हैं, वो सब परिणाम लगन के कारण से उत्पन्न हो जाता है। मूल में अल्प समझ में भी वो बात आनी चाहिए, अल्प बुद्धि में भी वो बात आनी चाहिए कि मुझे मेरा आत्मकल्याण कर लेना है। बार बार ये मौका मिलने वाला नहीं है, न मनुष्य भव बार बार मिलता है, और मनुष्य भव मिलता है तो सबको जैन धर्म भी बार बार मिलता नहीं है, और जैन धर्म मिलता है तो भी सच्ची बात मिलती नहीं है, कोई क्रियाकांड में, कोई किस में, कोई किस में, कोई रूढ़ि में, कोई रिवाज में, बिना सोचे बिना समझे कुल धर्म को अनुसरण कर लेते हैं और दरकार करते नहीं हैं कि ये बात सही है या सही नहीं है, इसकी दरकार करते नहीं है, तो उसका भी मनुष्य भव निष्फल हो जाता है। धर्म तो बहुत मूल्यवान चीज है। जगत में सोना और सोना से हीरा मूल्यवान, हीरा से प्लेटिनम के ऐसा कोई भी होता मूल्यवान, इससे भी मूल्यवान है। तो वो चीज में हम बहुत परीक्षा करके, बहुत सावधान हो करके उसकी प्रवृत्ति करते हैं। व्यापार आदि होता है तो उसमें हम बिल्कुल बेदरकार रहते नहीं हैं। जो भी जिसका व्यवसाय होता है तो पूरा सावधानी से करते कि नहीं करते, वो तो 150 साल के लिए जो प्रयास है उसमें भी प्रारब्धाधीनता होती है, पुरुषार्थाधीनता नहीं होती। यहाँ तो पुरुषार्थ साध्य आत्महित है और बहुत दरकार से और बहुत सावधानी से उसमें प्रवेश करके आगे बढ़ना है। ऐसे ओग संज्ञा से बिना सोचे बिना विचार करे धर्म प्रवृत्ति करने में कोई सार नहीं है। निकल जाएगी। जिसको सच्ची लगन होगी वही कहते हैं, देखो कि आत्मा की सच्ची लगन लगे और अंतर में मार्ग न हो जाए या भूल हो तो निकल न जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा बन सकता ही नहीं। क्या कहते हैं कि मार्ग की सूझ आ जाएगी, वो उस लगन मार्ग कर देगी। कहाँ लगन के कारण से अंदर में सूझ आ जाएगी कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और सच्ची लगन लगे और अंदर में मार्ग न हो, यानी उपाय नहीं मिले आत्महित का, मार्ग मैंने उपाय, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा बनता ही नहीं कभी। वो अपने अनुभव से कहते हैं कि ऐसा बनता नहीं है।
आत्मरुचि यानी लगन कितने अथवा लगन
जी,
आत्मरुचि
हाँ लगन हाँ वो हाँ साथ में होता है, लेकिन रुचि और लगन के अलग अलग सिम्टम्स हैं। लगन है वो ऐसा है कि उसके पीछे लगा ही रहे, छूटे ही नहीं। लगन क्या चीज है? उसके पीछे लगे रहे, इसलिए उसको कहते हैं लगन। और वो रुचि के साथ होती है, वो इसका आनुषंगिक परिणाम है। वो अविनाभावी रूप से साथ में होते हैं। आत्मा की लगनी ही जब मार्ग कर देती है तो इस भूमिका में प्रत्यक्ष सत्पुरुष का की कौन सी भूमिका होती है, क्या रोल होता है इसका? तो फिर गुरु का क्या रोल होता है इसमें, सत्पुरुष का क्या रोल होता है? कि जिसको आत्म प्राप्ति की लगन लगी उसको फर्स्ट थॉट, पहला विचार ये आएगा कि जिसने आत्महित किया है, ऐसा जो सत्पुरुष है उनके चरण में मुझे जाना चाहिए, वो भी लगन के कारण से आएगा। और लगन नहीं होगी तो उल्टा तर्क आएगा कि तो निमित्ताधीन प्रवृत्ति है, ये तो निमित्त की बात है, हम तो हमारे उपादान से काम करेंगे, उपादान में अनंत शक्ति भरी है, शास्त्र पढ़ेगा तत्वज्ञान का अभ्यास करेगा और उल्टा जाएगा, नुकसान करेगा। तो ऐसा सत्पुरुष की खोज, सत्पुरुष के चरण में जाना, इस प्रकार के परिणाम भी लगन के कारण से आता है। वरना वो बात कहने पर भी अच्छा नहीं लगता है या अनुसरण करने का ध्यान नहीं जाता है, ऐसा बन सकता है। तो ये समझना चाहिए कि आत्महित की लगन नहीं है, ये प्रश्न हो सकता है कि रोज स्वाध्याय करे, रोज पूजा भक्ति भी करे, यथाशक्ति दयादान भी करे, और फिर उसको आत्मा की लगन नहीं है, वो कैसा माने? कि उनको सूझ नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। स्वच्छंद से अपने मनमानी प्रवृत्ति धर्म साधन की जीव कर लेता है, ऐसे आत्महित होता नहीं है। हर कार्य की कोई सिस्टम होती है, पद्धति होती है, कोई भी कार्य की, उसमें भी जो टेक्निकल कार्य होता है जिसमें खूबियां होती है उसकी तो खास पद्धति होती ही है, ऐसे काम नहीं होता है। तो ये तो मोस्ट टेक्निकल है। आत्महित करना वो अनंत काल में किया नहीं जीव ने। यम नियम संयम आप कियो, पुनि त्याग विराग अथाग लियो, सब शास्त्र पढ़ दिए लेकिन आत्महित नहीं किया है, तो वो बात थोड़ी असाधारण है। साधारण बात
नहीं है,
नहीं है। धर्म साधन तो बहुत किया है। वो साधन बार अनंत कियो, तदपि कछु हाथ नजु न पड़ो, अभी कुछ हाथ में नहीं आया, मैंने आत्महित कुछ हुआ नहीं। तो ये बात बहुत रहस्यमय रही है। क्या आत्महित कैसे हो, यह बात बहुत रहस्यमय रही है। ये धर्म की टॉप सीक्रेट है और इसका मूल कहां रहा है वो बात चल रही है कि आत्म प्राप्ति की सच्ची लगन होनी चाहिए, आत्महित की सच्ची लगन होनी चाहिए, ये मूल की बात है। सच्ची लगन होगी तो सब सूझ जो है वो सच्ची ही आएगी, पर उसमें बीच में सत्पुरुष के की भूमिका आए बिना रहेगी नहीं, ये बात होने वाली है। आत्मलगन ही उसे मार्ग कर देगी। आत्मा की सच्ची लगन लगे और अंतर में मार्ग न हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं बनता, गारंटी दिया है और वो अपने अनुभव से गारंटी दिया है। ये महेश्वरी का जो अभिनंदन ग्रंथ है उसमें उनकी मुमुक्षु की जो भूमिका थी वो भूमिका के पत्र भी प्रसिद्ध किए गए हैं। वो पत्र पर से मालूम पड़ता है कि उनको कितनी लगन थी और ज्ञान दशा में वो बात बाहर आई जो वचनामृत में प्रसिद्ध हुई, तो पूर्व भूमिका और ज्ञान दशा का मेल खाता है कि वो बात अपने अनुभव से करते हैं। मुमुक्षु की भूमिका में ऐसी लगन लगी थी, ऐसी लगन लगी थी कि वो प्राप्ति हुए बिना छोड़े नहीं, तो 3 साल में अनुभव कर लिया, 18 साल की छोटी उम्र में अनुभव हो गया, 15 साल की उम्र में लगन लगी और 18 साल की उम्र में अनुभव कर लिया। तो इसका कारण क्या है वो अपने अनुभव से कहते हैं कि आत्मा की लगन लगे और अंतर में मार्ग न हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आत्मा की लगन लगनी चाहिए अपने आप, वो किसी से लगाई जाती नहीं, दूसरा लगन लगा दे ऐसा नहीं बनता, और कृत्रिमता से लगन लगाई जाए ऐसा भी नहीं बनता। स्वयं खुद को लगना चाहिए कि मैं अकेला जन्मा, सुख दुख भोगता हूं तो भी अकेला भोगता हूं, मरूंगा तो भी अकेला मरूंगा, स्वर्ग नरक में भी जाऊंगा तो अकेला सुख दुख को भोगूंगा, और मुक्त में जाऊंगा तो भी अकेला जाने वाला हूं। उसको कहते हैं 12 भावना में एकत्व भावना है। कोई साथ में आता नहीं और कोई सुख दुख में पार्टिसिपेट कर सकता
नहीं
है कि चलो थोड़ा दुख अपन ले लो, ऐसा हो सकता नहीं है। इसलिए मुझे मेरा आत्महित का विचार करना चाहिए। जिसको इस बात की कीमत आती है उनको लगन लगती है कि ये कोई अमूल्य चीज है जिसका मूल्य करने के लिए जगत में कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। किस टर्म में इसका कीमत करें? रुपयों पैसे सोना चांदी हीरे में कोई इसका मूल्य होता
नहीं
है। क्यों? कि हर हालत में जीव सुखी रहता है, कोई भी परिस्थिति बाहर में हो हमको दुख कोई पहुंचा नहीं सकता। अव्याबाद सुख स्वरूप आत्मा में से अव्याबाद सुख की प्राप्ति होती है, और दुख के निमित्त और दुख के प्रसंग प्राप्त होने पर भी दुख भोगता
नहीं
है। ऐसा कोई इलाज है? इसकी कीमत कितनी? इसकी कीमत करने के लिए कोई टर्मिनोलॉजी जगत में
नहीं है।
बस कीमत आती है, मूल्यांकन होता है, तो जीव उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे करके उसके पीछे लगन से लग जाता है और उसको सफलता होती है, होती है और होती ही है, गारंटेड बात है।
इसको वर्तमान दुख का मूल्यांकन आता हो तो सत्पुरुष निमित्त है या सत्पुरुष से विपरीत क्यों आते हैं, प्रश्न मुझे।
जिसको वर्तमान
जिसको मूल्यांकन आता है वर्तमान दुख का,
वर्तमान दुख का
हाँ नहीं का मूल्यांकन आता है वो प्रश्न अस्तंत हो जाता है कि सत्पुरुष निमित्त में कैसे आते हैं।
सवाल ही पैदा नहीं होता। गवार को भी, भैंसा चराने वाले रबारी को भी इतनी तो अक्कल है कि मुझे दर्द होता है तो कोई वैद्य डॉक्टर के पास मुझे जाना चाहिए, क्योंकि कि तभी भी विज्ञान से तो सामान्य मनुष्य अनजाना है। दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो कोई सिखाने की चीज थोड़ी ना है। हाँ, ये कोई सिखाने की चीज
नहीं है।
फिर भी हम बुद्धिमानियों को ये सिखानी पड़ती है, बड़ी ट्रेजेडी है हमारी, तो बड़ी करुणता है हमारी कि ये बात हमको कहनी पड़े या सिखानी पड़े या इसका प्रश्न उठाना पड़े। ये बात बहुत साधारण बात है। ये भव भ्रमण का भव रोग है। क्या है? जैसे शरीर का रोग होता है ऐसे जीव का ये रोग है। जीव भव भ्रमण करता रहता है, शरीर छूट जाता है, नए नए भव में वो भ्रमण करता है। ये भव रोग कितना पुराना है? अनंत काल का क्रॉनिक डिजीज है। जो रोग पुराना हो जाता है उसकी जड़ भी बहुत ऊंडी होती है और उसका जाना इतना आसान नहीं है, वो मुश्किल होता है। तो ये भवरोग है, बहुत क्रॉनिक है, बहुत पुराना है। वो भवरोग के इलाज करने के लिए इसके जो तज्ञ होते हैं, जानकार होते हैं, इनके पास जाना चाहिए, वो कोई सिखाने की चीज नहीं है। वो तो सहज सामान्य बुद्धि में भी वो बात समझ में आ जाती है।
नहीं जाता है तो उसको रोग की गंभीरता का पता नहीं।
अगर ये बात का ही सूझ नहीं आती है कि हमको डॉक्टर के पास जाना है, उसका जन्म मरण बहुत है लंबा, ऐसा समझ लेना चाहिए। जैसे दर्द होने पर डॉक्टर के पास जाने की बुद्धि नहीं है तो मरेगा, रोग बढ़ेगा और
मरेगा।
ऐसे इसको जिसको ये बात समझ में नहीं आती है तो उसका जन्म मरण मिटने के कोई नजदीकी परिस्थिति नहीं है, वो इसका सिग्नल है। रोग को रोग नहीं जानता है। जैसे किसी की किडनी में गड़बड़ हो गई और पैर में सूजन आया और मुंह पे भी सूजन आया, किडनी से क्या होता है, शरीर के अंग उपांग में सूजन आता है। वो आदमी डबल दुबला पतला था क्या, बिल्कुल छोटे जैसा दुबला पतला था, और सूजन आ गया तो थोड़ा मोटा दिखने लगा, कांच में देखा, आईना में देखा, अरे वाह मेरा तो वजन भी बढ़ गया और मैं कुछ अच्छा दिखाई देता हूँ, अच्छा हुआ, चलो अच्छा हुआ, अरे मर जाएगा। हाँ, जो सोजन को तंदुरुस्ती मानता है वो मर जाएगा। ऐसे कोई ऐसे रोग को ही रोग नहीं समझे तो क्या होगा, भवरोग को भवरोग नहीं समझेगा तो उसका जन्म मरण बहुत हो जाएगा, स्वाभाविक बात है, उसका इलाज उसको मिलेगा नहीं।
तो रोग का इलाज क्या किताब में पढ़ने से?
रोग के इलाज की बहुत किताबें मिलती है। किसी को दर्द हुआ, दर्द मिटाने के लिए वो घर से बाहर निकला, पहली दुकान आई, अनेक प्रकार के रोग के मिटाने के किताबों बेचने वालों की।
हाँ,
दूसरी दुकान आई मेडिकल स्टोर की, और तीसरी दुकान थोड़ी दूर थी, वो डॉक्टर की थी। अब क्या करना, जल्दी रोग मिटाना है तो पहले किताब लेकर के पढ़ने बैठ जाना कि पढ़ते पढ़ते मर जाएगा, दर्द बढ़ जाएगा, रोग बढ़ जाएगा। और मेडिकल स्टोर वाला के पास जाएगा तो कौन सी भी दवाई लेगा, एक रोग पर 25 दवा है, 25 कंपनियां है, क्या करें, सब का कॉम्बिनेशन भी अलग अलग होता है, क्या करें। डॉक्टर के पास जाना वो कोई सिखाने की चीज नहीं होती। इसलिए हम शास्त्र पढ़ करके आत्मकल्याण कर लेंगे ऐसा भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। दृष्टांत इसलिए है कि कई मुमुक्षु ऐसा सोच लेते हैं कि चलो बड़े बड़े महान आचार्य का शास्त्र हमको उपलब्ध है, हम घर में पढ़ करके हमारा आत्मकल्याण कर लेंगे, तो ऐसा होता नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, आत्मा का हित करने का विज्ञान भी बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि अरूपी पदार्थ है, आत्मा को रूप रस गंध वर्ण शब्द नहीं है, वो अरूपी पदार्थ है और उसका परिणाम भी अरूपी होता है, तो उसका विज्ञान है, वो समझने के लिए ज्ञानी की आवश्यकता अवश्य रहती है।
शास्त्र में
सब बात आई नहीं सकती, लिखी जा भी नहीं सकती, क्योंकि कुछ बात ऐसी है कि जो शब्द से वचन से अगोचर होती है, जो दिखाई जाती है लेकिन कही जाती नहीं है। स्वाद है वो चखा जाता है, बोलने से उसका पता नहीं चलता है। मैं घी का स्वाद है, मिर्च का स्वाद है तीखा, और मरी काली मिर्च का स्वाद भी तीखा है। आप डिफ्रेंशिएट कर दो, दोनों में क्या फर्क है, मिर्च भी तीखा और काली मिर्च भी तीखा, क्या फर्क है। बादाम काजू और सिंगदाना तीनों फीका है, और कहेंगे कि क्वालिटी अच्छी बहुत मीठा है। मीठा मैंने क्या, ये मीठी बदाम है, ये सिंगदाना भी मीठा है और काजू भी मीठा है, तीनों का स्वाद सरीखा है क्या?
नहीं,
तीनों फीका होते हैं और ककड़ी भी फीकी होती है, क्या फर्क पड़ेगा? तो चखने के सिवा उसका मालूम पड़ेगा नहीं। वो बात किताब में लिखी जाती है क्या? ये स्वाद की बात किताब में लिखी जाती है क्या? रोटी बनाना है तो वेलन ऐसे घुमाना, ऐसे मैंने कैसे, वो कोई लिखने की चीज
नहीं,
नहीं होती, वो तो घुमाने वाले को ही पता चलता है घुमाते घुमाते कि कैसे बैलेंस रखना, वरना रोटी बनेगी नहीं, कुछ और बन जाएगी बात। तो सब बात लिखने में आती नहीं, ऐसे सब बात किताब में होती नहीं है, शास्त्र में सब बात होती ही नहीं है।
11 अंग 12 अंग में सिर्फ 5 पूर्व बाकी रहता है, ऐसा जीव ने अनंत बात पढ़ा, तो 5 पूर्व क्या वो ज्ञानी के हृदय में रहते हैं?
हाँ, तो 5 पूर्व की किताब नहीं होगी क्या? हाँ, अरे 11 अंग 9 पूर्व में भी कहीं बातें जो है वो ज्ञानियों के हृदय में होती है, वो दिखाने की, दिखा करके सिखाने की होती है, वो शब्द में आती
नहीं है,
नहीं है। कि शास्त्र में मार्ग कहा है, मर्म कहा नहीं है, वो सीक्रेट है। शास्त्र में मार्ग कहा है, इलाज बताया है, लेकिन वो इलाज कैसे करना, वो बात ज्ञानी के पास से मिलती है, वो बात शास्त्र में से मिल सकती
नहीं है,
क्योंकि वो प्रैक्टिकल साइड की बात होती है। मर्म मैंने रहस्य, मर्म मैंने साक्षात परिणमन लिखा है। मर्म तो सत्पुरुष के अंतरात्मा में रहा है, कहाँ रहा है? इसके अंतर परिणमन में मर्म रहा है, उसको देखो तो कि परिणमन कैसे होता है। सुन लिया इसलिए ज्ञान हो गया, समझ लिया इसलिए ज्ञान हो गया, ऐसा भ्रम में रहना चाहिए नहीं, परिणमन होना चाहिए। प्राप्त उपदेश, प्राप्त बोध, उसका परिणमन होना चाहिए। परिणमन नहीं होता तो इसका लाभ मिलता नहीं है। मर्म तो सत्पुरुष के अंतरात्मा में रहा है, इसके लिए मिलने पर विशेष चर्चा हो सकती है, वो बात हम चिट्ठी में लिख सकते
नहीं है।
धर्म का रास्ता सरल है, स्वच्छ मैंने पवित्र है, और सहज मैंने स्वाभाविक है। क्या लिखते हैं? धर्म का रास्ता सरल, स्वच्छ और सहज है, परंतु कोई विरल आत्मा उसको प्राप्त करते हैं, और विरल आत्मा ने प्राप्त किया है, और विरल ही आत्मा कोई प्राप्त करेगा। तीनों काल में कोई कोई कुछ एक जीव उसको प्राप्त करता है, क्योंकि संसार में बहुभाग जीवों की रुचि संसार की होती है, मुक्त होने की होती नहीं है। बस इतनी बात है। आत्मा की लगन लगनी चाहिए, उसके पीछे लगना चाहिए, पीछे पड़ जाना पूरी ताकत से। क्या जितनी हमारी शक्ति है, अगर सिद्ध पद की प्राप्ति होती है और इसका शिलान्यास इधर होता है, नींव का पत्थर है ना, ये नींव का पत्थर है, तो नींव का पत्थर डालते तो उसको हम क्या कहते हैं, शिलान्यास है। शिलान्यास की विधि के वक्त हम धाम धूम से पूजा करते हैं, फिर पत्थर पर पत्थर चढ़ता है, वन स्टोरी, सेकंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी, फाइव स्टोरी, हाँ, कोई पूजा नहीं करते, शिलान्यास की पूजा करते और वहां रत्न डालते हैं। पंच रत्न डालते कि नहीं डालते, इसकी महिमा है, इसकी कीमत है। तो हमारे स्वाध्याय में, इस शिविर में जो चर्चाएं और विषय हमने सिलेक्ट किया है, ये मुमुक्षु की भूमि का जो नींव का पत्थर है उसको ही सिलेक्ट करके रखा है कि हमको ये प्रयोजनभूत है। ऊपर ऊपर की बातें, ऊंची ऊंची बातें हमको प्रयोजनभूत वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में तो हमारा सही शुरुआत कैसे हो, यथार्थ शुरुआत कैसे हो, यही हमें देखना है। उसके पीछे लगना चाहिए, आत्मा को ध्येय रूप रखकर दिन रात अहर्निश सतत प्रयत्न करना चाहिए, और चलेगा वो प्रयत्न, वो तो करना चाहिए। वो उपदेशात्मक वचन की पद्धति है, लेकिन जिसको लाभ मालूम पड़ता है कि बहुत बड़ा लाभ है, उसके परिणाम उसके पीछे लगे ही रहते हैं। जैसे कोई लड़का है, अपना स्कूल का कॉलेज का अभ्यास को छोड़ करके, यानी विद्यार्थी जीवन को पूरा करके कॉमर्शियल लाइफ में प्रवेश करता है, तो सबसे पहले वह उसको क्या समझ में आता है कि पैसे की बहुत कीमत है। कोई भी चीज खरीदने का माध्यम क्या है, पैसा, करेंसी। इसलिए हमें किसी भी प्रवृत्ति करके पैसा कमाने की आवश्यकता उसको लगती है। जब उनको उतना भान होता है, उतनी समझ आ जाती है, फिर इसके परिणाम क्या हो जाते हैं आप अपने आप देख लीजिए। खाते खाते भी वही विचार चलेगा, चलते चलते भी वही विचार चलेगा, और सोने के लिए बिस्तर पर जाएगा, पलंग पर जाएगा तो भी वही विचार चलेगा। जी, करना नहीं पड़ता है, अपने अनुभव से देखो ना, अपने अनुभव से देखो कि सहज चलता है कि नहीं चलता है। क्यों चलता है सहज? कि वो सुख बुद्धि हो जाती है, सुख पाने के लिए पैसे की जरूरत है। तो जिसका जहां सुख का निश्चय हो गया, निर्णय हो गया, परिणाम को चलाना नहीं पड़ता, विचार को चलाना नहीं पड़ता, अपने आप चलने लग जाते हैं। लग जाते हैं कि नहीं लग जाते हैं? ये बात कही पुरुष वर्ग की। स्त्री वर्ग को क्या होता है, उसको सुख इसके धनी में लगता है, पति में लगता है। पूछो उनको कि तुम रसोई बनाती हो, कपड़े धोती हो, घर की साफ सफाई करती हो, तुम्हारे परिणाम कहाँ लगे हैं बताओ? हाँ, तो यशो विजय जी का पद है, बहुत अच्छा पद है, आठ दृष्टि की सज्जाई में। मन महिलानु वाला उपरे, बीजा काम करंतरे, तेम श्रुत धर्मे दृढ़ मन दृढ़ रहे, ज्ञान क्षेपक वंतरे। वो परिणाम को कृत्रिम रूप से करना नहीं पड़ता, होता ही रहता है। सुख बुद्धि हो गई कि परिणाम चलने लगेगा। अब हमको यही समझ करनी है कि हमारा सच्चा सुख कहाँ है, निराकुल सुख शांति कहाँ है, कैसे प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है। अगर हमारी समझ में बैठ गया कि आत्मा में सुख भरा है और उसकी सुख प्राप्त करने की कोई पद्धति है, हमको पद्धति समझनी चाहिए, तो इसके पीछे हमारा परिणाम लगे बिना रहेगा नहीं। आत्मा की लगन लगनी चाहिए, उसके पीछे लगना चाहिए, आत्मा को ध्येय रूप रखकर दिन रात सतत प्रयत्न करना चाहिए। मेरा हित कैसे हो, मेरा कल्याण कैसे हो, इसकी चिंता हो जानी चाहिए। मैं आत्मा को कैसे जानूं, मेरे स्वरूप को कैसे जानूं, जिसमें सुख भरा है उसका अनुभव कैसे करूं मैं, इस प्रकार लगन बढ़ाकर प्रयत्न करें या प्रयत्न चले, प्रयत्न करें माने प्रयत्न चलें, तो अवश्य मार्ग हाथ लगे, तो इसका इलाज हाथ में आए बिना रहे नहीं, वो गारंटेड बात है। तो मुमुक्षु के लिए इस प्रकार का जो वचनामृत है वो ध्यान देने योग्य है। अब इसके पीछे 8 नंबर के पेज में 21 नंबर का वचनामृत है। ये वचनामृत भावना की ताकत को दर्शाता है। क्या जीव के आत्मकल्याण की भावना जो है उनको वो भावना की ताकत के ताकत कैसी होती है, उस विषय के उस विषय में ये वचनामृत निकले हुए हैं। अभी अपने स्वाध्याय में भी इसका एक दफे रेफरेंस लिया था, जरा विस्तार से उस पर अपन स्वाध्याय करेंगे। चैतन्य को मैंने आत्मा को, चैतन्य को माने आत्मा को, चैतन्य में से परिणमित भावना यानी आत्मा में से उत्पन्न हुई भावना, आत्मा को आत्मा में से उत्पन्न हुई भावना का अर्थ क्या माने क्या, कि राग द्वेष में से नहीं उदित हुई भावना, राग के कारण से नहीं, द्वेष के कारण से नहीं, मोह के कारण से नहीं, आत्मा में से आत्मकल्याण की भावना उत्पन्न होनी चाहिए, अंदर में से, ऊपर ऊपर से नहीं। ऐसा होता है कि हमारे इस प्रकार के माहौल में आने का अनेक कारण बनते हैं, बनता है। अभी हमने एक प्रश्न पत्र निकाला था, उसमें लिखा है कि आपको इधर आने का क्या कारण हुआ, तो किसी ने लिखा अभी हमारे पिताजी आते थे इसलिए हम आए, किसी ने लिखा कि हमारे मित्र आते थे इसलिए हम आए, किसी ने बोला कि ऐसे ही कोई योग संयोग बन गया, हमने कोई आगे पीछे सोचा नहीं था पर ऐसे मिलना जुलना हो गया और हम आने लग गए। तो उस प्रकार से जिसका प्रवेश हुआ हो उसको भावना में आना उतना आसान नहीं है, और जिसको आत्मकल्याण की चिंता हुई, हित हित की चिंता हुई, भव भ्रमण की चिंता हुई, वो उसका प्रवेश होगा तो यथार्थ रूप से इस लाइन को पकड़ लेगा। तो यथार्थ भावना किसको कहते हैं, कि किसी भी राग द्वेष के कारण से नहीं। द्वेष में क्या होता है, किसी के साथ अनबना हो जाता है और लाइन बदल जाती है, प्राग में किसी न किसी दूसरे दूसरे कारण से, किसी के दूसरे के संग से आ गए। इनके प्रति हमारा राग था, हमारे इनके प्रति था, हमने बोल दिया तो भी आपको आना जरूरी है, आप आइए, बहुत अच्छी बात है, आत्मा का कल्याण की बात है, और फिर हम आगे, ऐसा नहीं। अंदर से आत्म कल्याण की भूख लगे, तृषा लगे और खोज चले, और खोजते खोजते ये मार्ग मिल जाए तो फिर भावना जो उठेगी वो तो अंतर से उठेगी आत्म कल्याण की। ऐसी यथार्थ भावना हो तो वह भावना फलती ही है, फलती है ऐसा नहीं लिखा, फलती ही है, गारंटेड। मैंने यथार्थ आत्म कल्याण की भावना आत्मा में से हुई, उनकी आत्म का आत्म कल्याण होगा, होगा और होगा ही। एक 100 में से एक आदमी को भी अपवाद के रूप में भी निष्फलता होने वाली नहीं है, नो फेल्योर। सच्ची लग भावना होनी चाहिए, यथार्थ भावना होनी चाहिए। अब देखो, यथार्थ भावना होने में आपको लेना देना क्या है, यथार्थ भावना होने में आपको कौन सी आपत्ति आती है, कौन सी तकलीफ होती है? अपने आत्म कल्याण की यथार्थ भावना होनी, दूसरे से तो कोई लेना देना नहीं है, न दूसरे से कोई संबंध है। नए नए लोग कभी मिलते हैं तो बहुभाग लोग ने तो ऐसा समझ लिया है कि हमारा जो जैन धर्म है ना, वो त्याग प्रधान धर्म है, त्याग करना पड़ेगा, और हमको पुण्य योग से सब कुछ मिला है, संपत्ति अच्छी मिली है, अब त्याग करने का हमारा मन तो होता नहीं। आप कहोगे तो एक दो दिन उपवास कर लेंगे, लेकिन पारणा और अतरवारणा में फिर हमारा कंट्रोल रहने वाला नहीं है, तो ये तो होगा ही। लेकिन हम कहते हैं कि यहाँ कुछ लेना देना, त्याग करना कुछ बात नहीं है। आप पहले ऐसा करो ने, अपने आत्म कल्याण करने की यथार्थ भावना में आ जाओ। लेना देना कुछ नहीं है, कोई चीज को हिलानी नहीं है। मकान को मकान की जगह में रखो, परिवार को परिवार की जगह में रखो, और फर्नीचर को फर्नीचर की जगह में रखो, किसी को हिलाना नहीं है। फर्नीचर ग्रह की शोभा होती है ना घर की, नहीं ठीक है। प्रश्न वो है कि ऐसी यथार्थ भावना का फल उसी भाव में मिलता है कि दूसरे भाव में मिलता है? ये हमारा धर्म का व्यापार हार्ड कैश का है, क्या कैश का नहीं है, हार्ड कैश का है। धर्म उधारी का धंधा नहीं है, बिल्कुल एकदम रोकड़ा धर्म है। भावना करो और फल इधर ही मिलता है, अभी अभी मिलता है, क्या दूसरे भाव में नहीं, क्योंकि आयुष तो कब भी पूरा हो जाए। हम भावना आज करें और हार्ट अटैक आ जाए तो भावना का फल दूसरे भाव में मिले, ऐसा भी नहीं। अभी भावना करो, अभी फल मिलेगा, हार्ड कैश है। हाँ क्या लालच लग जाए ऐसा बिजनेस है, कैसा है? लालच लग जाए ऐसा बिजनेस है। भाग चंद शिव लालच लागो, पहुंच नहीं जहां जम के, वहां जम नहीं आ सकता। मृत्यु के वक्त लोग में कहवत है ना कि यम आता है, आत्मा को ले जाता है। ये तो ऐसा कल्याण आत्मा का है कि वहां यम को आना पड़ता नहीं है, नो एंट्री। यमदूत के लिए प्रवेश नहीं है, अजर अमर हो जाएगा, मृत्यु का अभाव हो जाएगा, ऐसा है। उसकी कीमत कैसे करे? मृत्यु नहीं हो इसकी कीमत कैसे करे अजर अमर पद अमर को अजर अमर पद को प्राप्त हो जाए, पर हुए कि नहीं, हमारे अनंत तीर्थंकर हो गए हैं, एक दो नहीं हुए है, ये 24 तो वर्तमान 24 ही है, भूतकाल में कितना हुए, अनंती 24 ही होगी है और अनंती 24 ही होने वाली भी है, तो हमारा नंबर क्यों नहीं लगे। वो तीर्थंकर हमारी जाति के आत्मा थे, कोई दूसरी जाति के आत्मा नहीं थे, वो हमारी जाति के आत्मा थे, हम भी उसी जाति के ही है। हमारी जाति और तीर्थंकर की जाति में रंच मात्र भी फेर नहीं है, जाति अपेक्षा से रंच मात्र भी फेर नहीं है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, अवश्य कर सकते हैं। हाँ, हाँ, भगवान के सम्मुख शरण में आते हैं पशु पक्षी, पशु पक्षी आते हैं, मैंने भूचर आते हैं, पक्षी मैंने खेचर आते हैं, और जलचर भी आते हैं, मछलियाँ आती है, तो काचबे आते हैं, हाँ, टॉर्टोइस काचबे आते हैं कि नहीं, वो समुद्र में रखे हैं सब, तीनों आते हैं, और वो आत्मकल्याण करते नहीं, सच्चे श्रावक बनते पंचम गुण स्थान तक आ जाते हैं। हाँ, अगर हमने धर्म की प्राप्ति नहीं की तो हम ऐसे पशु पक्षी से भी गए बीते है, ऐसे कोई मूर्ख कहे, गद्दा कहे तो चोट लग जाए, हाँ, इतना बुरा लगे कि जिंदगी में भूलूंगा नहीं मेरा अपमान क्या है, समों के बीच में मुझे गद्दा बोला, हाँ, गद्दा मैंने अक्कल बिना का, लेकिन आत्महित जो नहीं करता है वो क्या है, बुद्धि नहीं है, आत्महित की बुद्धि नहीं है तो बुद्धि नहीं है, सीधी सादी बात है। पशु करता है आत्महित, और तू मनुष्यों के नहीं करता है, कैसी बात है। भगवान के सम्मुख शरण में ये सबूत है इसका, कि पशु पक्षी भी आत्महित कर सकता है, बहुत उसकी बुद्धि बहुत सीमित होती है, बहुत सीमित होती है, मनुष्य जितनी विचार शक्ति नहीं है, लेकिन प्रयोजन के विषय में उसका परिणाम काम करता है, उसको भी सुख दुख मालूम पड़ता है, उसको भूख प्यास मालूम पड़ती है, इसलिए वो भी आत्महित कर सकता है। हाँ, जिसको आत्मा का धर्म करना है उसके लिए ये चतुर्थ काल है, पंचम काल नहीं है किंतु चतुर्थ काल है, समझ लेना। पंचम काल में धर्म करना होना मुश्किल है, यहाँ आसान है थोड़ा, ऐसा समझ लेना, क्योंकि मुद्दे की बात आत्मकल्याण की यहाँ मिल सकती है, तो हमारे लिए चतुर्थ काल से भी अधिक है अगर हम कर लें तो। हाँ, सागरोपम का इंतजार करना पड़ता है, और ऐसे जो वहाँ लालायत होते हैं मनुष्य भव को, तो उसे देव को भी देवानुप्रिय कहते हैं, देव को भी प्रिय है ऐसा मनुष्य भव हमको मिला है। ऐसी यथार्थ भावना हो तो वह भावना फलती ही है, यदि नहीं फले तो इसका फल नहीं मिले तो जगत को, जगत को माने 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े, एक परमाणु भी का नाश नहीं होता, शून्य नहीं होता, लेकिन भावना में उतनी ताकत है, 14 ब्रह्मांड में कुदरत की व्यवस्था है, क्या है, कुदरत की व्यवस्था है, जीव जैसा परिणाम करता है ऐसा फल भोगता है। पुण्य परिणाम करता है देवलोक में जाता है, पाप परिणाम करता है पशु पक्षी नरकी में जाता है, और उसको ऐसे ऐसे फल भोगने का वहाँ क्षेत्र होता है, वहाँ सब व्यवस्थाएं कुदरती व्यवस्था है, और अरबों माइल की सफर बिना साधन जीव कर अकेला देह को छोड़ करके अकेला वहाँ चला जाता है, सेकंड में, सेकंड तो बहुत बात है, इसके पहले चला जाता है, इतनी फास्ट तेज गति से जाता है यहाँ से देह छोड़ता है, तो ये कुदरत की व्यवस्था है। हम चावल का दाना बोएंगे हमको चावल मिलेगा, हम गेहूं का दाना बोएंगे हमको गेहूं मिलेगा, और ज्वार का दाना बोएंगे तो भले बगल बगल में बो, अब पास पास में हो फिर भी जैसा बोएंगे ऐसा ही मिलेगा, ये कुदरत की व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? कुदरत मैंने वस्तु धर्म, पदार्थ के ये धर्म है, ये साइंस है बिल्कुल, इसका विज्ञान है। ऐसे ही भावना का विज्ञान ऐसा है कि आत्मकल्याण की भावना होए और आत्मकल्याण नहीं मिले तो 14 ब्रह्मांड को कुदरत को फेल होना पड़े, जबकि कुदरत तो फेल होती नहीं कभी, इसलिए ऐसा कभी होता नहीं कि आत्मकल्याण की अप्राप्ति हो, ऐसा कभी होता नहीं है। 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े अथवा तो इस द्रव्य का नाश हो जाए, आत्मा का ही नाश हो जाए, लेकिन ऐसा कभी बनता नहीं है। भावना फलती है और फलती ही है, इसे कहते हैं भावना वाला ऐसा कहता है कि हमारी भावना में ऐसी ताकत है कि कुदरत को झुकना पड़ता है हमारे पास, हम कुदरत को झुकते नहीं है, अरे कुदरत हमारी गुलाम रह करके काम करेगी, क्या कुदरत हमारी गुलाम हो जाएगी, ऐसी ताकत हमारी भावना में है, इसका नाम भावना है, उसकी भावना नहीं फले ऐसा कभी बनता नहीं है। परंतु ऐसा होता ही नहीं, ऐसा कभी बनता नहीं है कि नव नहीं फले। चैतन्य के परिणाम के साथ कुदरत बंधी हुई है। देखिए पाप के परिणाम करते हैं और पाप के फल भोगते हैं कि नहीं भोगते हैं? वर्तमान में पाप नहीं करते हो लेकिन पूर्व के परिणाम किए हो तो उसका फल उसको भोगना ही पड़ेगा, कुदरत की व्यवस्था है। और वर्तमान में पाप करते हो लेकिन पूर्व का पुण्य किया हो तो उसको पुण्य के संयोग बनेंगे, वर्तमान में भले कितना ही पाप करता हो, ये कुदरत की व्यवस्था है। ऐसे जब कुदरत मलिन परिणाम के साथ बंधी हुई है, क्या हमने पूज्य बैंसरी को सीधा प्रश्न पूछा था रूबरू में कि आपने ये 14 ब्रह्मांड वाली शून्य की बात लिखा, वो बहुत ताकत वाली बात लिखा है, इसके पीछे आपका कैलकुलेशन क्या है, आपकी वैचारिक पूर्व भूमिका कैसी है, किस बैकग्राउंड में से ये बात आई इतनी जोर से? तो कहा कि देखो जब मलिन परिणाम के साथ भी कुदरत बंधी हुई है कि जो पाप करता है उसको पाप का फल भोगना ही पड़ता है, पुण्य करता है उसको पुण्य का फल भोगना ही पड़ता है, तो ये पवित्र परिणाम है इसका फल नहीं आएगा क्या? कुदरत इसके साथ बंधी हुई नहीं है, मलिन परिणाम से भी कुदरत बंधी हुई है तो पवित्र परिणाम का तो फल नहीं मिले, तो वास्तव में शंका करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है, ये वस्तु का स्वभाव है, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। और यह अनंत तीर्थंकरों की कही हुई बात है, मैं कहता हूं वो बात नहीं है, अनंत तीर्थंकरों ने यही बात की है, इसलिए कहीं भी अविश्वास करने की कोई अवकाश
नहीं है
कि इसमें कहीं शंका की जाए या अविश्वास किया जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। सती भावना में आ जाओ, यथार्थ भावना में आ जाओ, आपका आत्मकल्याण सुनिश्चित है, अच्छी तरह से वो निश्चित हो गया है, उसमें कोई शंका करने की जरूरत नहीं है, निशंक बात है। नहीं, ये कोऑर्डिनेशन से, दोनों का कोऑर्डिनेशन है, अनुषंगिक परिणाम होते हैं दोनों।